हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो श्लोक क्रमांक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदना बहुशाखा हिनन्ताश्च बुद्धयोर व्यवसायिनां। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। पिछले श्लोक से इसका संबंध है। जो व्यक्ति बुद्धि के द्वारा शास्त्र सुन करके निर्णय कर लेता है कि भक्ति ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है और भक्ति में किया जाने वाला कोई भी प्रयास कभी भी नष्ट नहीं होता है, तो वो अन्य भौतिक प्रयासों में अपनी बुद्धि को नहीं लगाता है, क्योंकि वो समझता है बुद्धि के द्वारा कि इन प्रयासों का लाभ भी अगर कुछ है तो वो तभी तक है जब तक हमारा शरीर रहता है। तो यहाँ पे ये श्रद्धा का सूचक है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय कर ले कि मुझे कृष्ण की भक्ति ही करनी है, और समाज के लोग क्या कहते हैं, समाज का क्या मत है, उसके अनुसार अपने प्रयोजन को वो शिथिल नहीं करता, ढीला नहीं करता है। तो उनका प्रयोजन दृढ़ रहता है, मुझे कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करना है और इसके लिए अभिधेय है भक्ति, और भक्ति में ही लग करके मुझे अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करना है। इस चीज को यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार से ये व्यक्ति एक ही लक्ष्य एक लक्ष्य हो जाते हैं। व्यवसाय का अर्थ होता है जैसे आदमी कोई बिजनेस करता है तो फिर वही बिजनेस करता है। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि व्यवसाय आत्म का बुद्धि मतलब बिल्कुल मेरा और कोई कार्य नहीं है, कृष्ण की भक्ति के अलावा मेरा और कोई व्यवसाय नहीं है और कुछ कार्य नहीं है, ये बुद्धि बिल्कुल दृढ़ हो जाती है एक बुद्धि योगी और भक्ति योगी की। तात्पर्य यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा व्यवसायात्मिका बुद्धि कहलाती है। तो यही बात की हम चर्चा कर रहे थे कि दृढ़ श्रद्धा। चैतन्य चरितामृत में मध्य 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होय। श्रद्धा शब्द का अर्थात है शब्द का अर्थ है ये है कि मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं तो मैंने सारे कर्म कर लिए हैं, कर चुका हूं या कर लिए हैं। अब अलग अलग धर्मों को अलग अलग कर्मों को करने में मेरी रुचि नहीं है। इस बात को श्रद्धा, जब हमारी श्रद्धा आ जाती है हमारे हृदय में तो ये सच्चा विश्वास आ जाता है, तो श्रद्धा का सूचक है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। अलौकिक का अर्थ है इस जगत में हमें बिल्कुल दिख नहीं रही है, जैसे भगवान कृष्ण हमको दिख नहीं रहे हैं, तुरंत उनका तुरंत अनुभव भी नहीं हो रहा है, लेकिन उन पर विश्वास होना कि भगवान है, भगवान की सत्ता है, क्योंकि भगवद गीता में बोला गया है। इस प्रकार से जब कोई कृष्ण भावनामृत में के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार मानवता या राष्ट्रता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग कहते हैं कि तुम्हें समाज के बारे में भी कुछ करना चाहिए, नहीं। एकमात्र कर्तव्य भक्त का, एक शुद्ध भक्त का, कि वो कृष्ण को संतुष्ट करे और उस संबंध में समाज की, राष्ट्र की, परिवार की सेवा करे। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। मतलब कोई व्यक्ति शुभ कार्य करने में लगा हुआ है तो उसका जो पुण्य आता है उस पुण्य से उसको और ऐसे दान पुण्य करने की रुचि होती है, और वो अशुभ कुछ कार्य करता है तो फिर वो अशुभ कार्य उसके और प्रवृत्ति बना लेते हैं, वो और अशुभ कार्य करे और पाप करे, इस प्रकार से संस्कार बनता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं करना रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पे होते हैं, क्योंकि उसमें उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। बहुत सुंदर बात है। कृष्ण भावना का अर्थ है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, मुझे उनकी सेवा करना चाहिए। अब ये कार्य मेरे लिए ठीक है और ये कार्य मेरे लिए ठीक नहीं है, इसका निर्णय शुभ अशुभ विचार के अनुसार होता है भौतिक जगत में कर्मकांड के अनुसार, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये कार्य इस प्रकार से नहीं होता। जैसे गुरुजनों का वध पाप है, लेकिन अर्जुन अपने दासत्व को भगवान के दासत्व को स्वीकार करके इस युद्ध को करे और अपने गुरुजनों का वध भी किए या अपने पितामह का वध किया। क्यों किया? क्योंकि वो समझ रहे थे कि कृष्ण इससे प्रसन्न होते हैं, इन द सेंस कि कृष्ण की इच्छा है, दिखाना चाहते हैं कि धर्म के पक्ष में चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो उसको गिरना पड़ेगा, उसको हारना पड़ेगा। ये कृष्ण की इच्छा थी और इसको दर्शाने के लिए, समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए भगवान अर्जुन को निमित्त बनाना चाहते थे। इसलिए सामाजिक धर्म कर्म के बारे में विचार ना करके अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध किया। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम भक्ति करते हैं तो अपने आप ही देहात्म बुद्धि का जो आवरण है या आसक्ति है वो व्यक्ति की नष्ट हो जाती है। देहात्म बुद्धि का प्रभाव क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि ये जो समाज है, ये देश है, ये मेरे लिए पूजनीय है और अपने आप को इस त्रिगुणात्मक शरीर यानी कि कफ पित्त और वायु के बने हुए शरीर से अपनी पहचान करता है। तो ये एक भक्त भले ही शारीरिक चेतना में हो लेकिन अगर वो कृष्ण भगवान की भक्ति में पूरी तरह से संलग्न रहता है, लीन रहता है, तो उसका मन हमेशा कृष्ण भावना भावित रहता है और वो कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार से लीन होकर के देहात्म बुद्धि से स्वतः छूट जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। बहुत सुंदर बात है। ऐसा नहीं है केवल भावनाओं के द्वारा हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान के द्वारा जब सुनते हैं कि हम देह नहीं है, कृष्ण के नित्य दास है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, इन सब ज्ञान के को सुन करके हमारी दृढ़ जो श्रद्धा है वो दृढ़ होती है, विश्वास बड़ा पुख्ता होता है। इसीलिए हरि नाम के साथ साथ हमको शास्त्रों को सुनना और पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये हमारी श्रद्धा को रस देते हैं, ये जल देते हैं, इससे श्रद्धा हमारी विकसित होती है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जगत में हमें बहुत सारे कारण दिख रहे हैं, इसका कारण ये है, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ और इस ठीक भी है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि मूल कारण कृष्ण है। जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन का एक डब्बा हमें दूसरे डब्बे को खींचते हुए दिख रहा है, तो भले ही हमको इंजन इस समय ना दिखे लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इंजन नहीं दिख रहा है, फिर भी ये सारे डब्बे एक दूसरे को खींच तभी सकते हैं जब ये इंजन से बंधे हुए या इंजन उनको आगे से खींच रहा है। उसी प्रकार से जगत, ये क्रियाशीलता है जगत में क्योंकि भगवान इसके पीछे हैं और भगवान इसको क्रियाशील करवा रहे हैं अपनी शक्ति के द्वारा। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मनुष्य मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है और वो सर्वोच्च सेवा है कृष्ण भावनामृत का प्रचार। उसके बिना सभी लोग हमेशा दुख भोगते रहेंगे, चाहे वो धनी हो, चाहे वो सुखी हो, या जो शक्तिशाली हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे वो गरीब हो, किसी भी परिस्थिति में, तो चाहे परिवार वाले हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी हो, उसकी सर्वोच्च सेवा यही है कि उन्हें कृष्ण भावना भावित करने का प्रयास किया जाए। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो गए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। तो अगर ये बात किसी को पता नहीं है तो चाहे कितना भी धनी व्यक्ति हो, किसी भी भौतिक सिचुएशन में हो, वह संतुष्ट रहेगा। इसीलिए अगर हम किसी की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो हमें कृष्ण का संबंध उस व्यक्ति से वापस उसको समझाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि वो कृष्ण की सेवा शुरू करे। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आजकल हमें गूगल पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं लेकिन वो देखिए भौतिक होती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए हमें एक प्रमाणिक गुरु की बहुत आवश्यकता होती है और हम देख सकते हैं कि जगत में बहुत सारी चीज सीखनी होती है, उसके लिए हम केवल इंटरनेट के माध्यम से नहीं सीख सकते हैं। और अगर हमने सीखा भी है तो हमने गलत सीखा है कि सही सीखा है, इसका निर्णय कौन करेगा? ये तो हमें सिखाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो हम गलती करके सीखते रहें, उससे अच्छा है कि गुरु के मार्गदर्शन में सीखें। एक वैष्णव के मार्गदर्शन में भक्ति करना से हमेशा अच्छा रहता है और प्रभुपाद की कृपा से इतनी बड़ी सुंदर संस्था है हमारी, इस्कॉन की संस्था है, जिसमें हमें बड़ी आसानी से वैष्णव का मार्गदर्शन मिल जाता है और हम उनके मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति कर सकते हैं। बिना गुरु के मार्गदर्शन के, उनकी कृपा के प्राप्त किए व्यक्ति भक्ति में सिद्ध नहीं हो सकता है। और इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि हम दीक्षा का स्टैंप लगा लें, हमारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन यापन करेंगे तब हमारा उद्धार होगा। केवल दीक्षा का स्टैंप लगाने मात्र से हमारा उद्धार नहीं हो जाता, ये समझना चाहिए। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कृष्ण भावना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, दक्ष होने के लिए का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति खाली सारा घर छोड़ के बैठ जाए, लेकिन अपने अपने कर्मों को कैसे कृष्ण को समर्पित करना है ये सीखना होगा। अभी हमको एक बार एक भक्त घर में गए तो पता चला कि प्रसाद में अलग से भक्त तुलसी डाल रहे थे, तो ये एक अपराध है। और ये जब हमारे भक्त ने देखा तब उनको टोका। तो ये केवल सुन लेना कि भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी अर्पित करनी चाहिए, ठीक है, सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जब हम गलती कर रहे हैं उसके लिए हमारे गुरुजी होने चाहिए, भक्त होने चाहिए, जब हमको बताएं कि भाई देखिए तुलसी जब भगवान को अर्पित किया जाता है तब डाली जाती है, ऊपर से ड्रेसिंग करने के लिए डाली जाती। या फिर हमने देखा भक्त लोग एक बार अपने खाने अपना जो ग्लास इसमें वो पीते हैं खाते हैं उससे भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो ये भाव ये चीज़ें भावनाओं के स्तर पर करने से इस प्रकार से हम अपराध करते हैं भगवान के प्रति। तो गुरु हमें सिखाते हैं एक बार में हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए। एक बार मैंने भक्त से पूछा कि भगवान तो हमेशा मुस्कराते रहते हैं, प्रभुपाद के शिष्य हैं मुकुंद दत्त प्रभु, कि हम तो देखते हैं भगवान कैसा भी गाओ कैसा भी खेलाओ मुस्कराते रहते हैं, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि भगवान हमसे प्रसन्न हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला इसीलिए गुरु आवश्यक हैं जो हमारे कान को उमेड़ सकें और बताएं कि भाई देखो इस तरह से सेवा मत करो, ये सेवा का अपराध है। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा रोल है हमारी भक्ति की प्रगति के लिए। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, गुरु के उपदेश क्या है, 16 माला का जप करें, इस पर्टिकुलरली इस कौन में 4 नियमों का पालन करें, इस कौन में रहें, इस कौन को छोड़ के ना जाएं, नम्रता से सेवा करें। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है वो हमारे ऊपर हमेशा रहती है और उसका पालन करके हम हमेशा गुरु की संग सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, भले ही गुरु किसी भी जगह पे हों फिजिकली। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि उनके उपदेश अपने जीवन का लक्ष्य बनाना, मतलब हर समय हमें उनके उपदेशों का पालन करना होगा, यानी हर समय कृष्ण की सेवा में लगे रहना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान नगति कुतोपि ध्यायन स्तुवंस्तस्त यशस्त्रि संधम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान ही प्रसन्न होते हैं, गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती, अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करना चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। तो क्या करना है, गुरु को स्मरण करना है, चिंतन करना है, मतलब गुरु ने क्या आज्ञा दी है, किससे वो प्रसन्न होंगे, ये चिंतन करना है, साथ साथ उनकी कृपा याचना करनी है। ऐसा नहीं है कि हम खाली कर्तव्य को अच्छे से करते रहेंगे तो पूरा पूर्ण हो जाती, नहीं, उनके कृपा की याचना करना है कि मैं अपने कर्तव्य करने मात्र से सिद्धि को प्राप्त नहीं होऊंगा, आप प्रसन्न होए, आपके आशीर्वाद हो तो मैं आगे प्रगति कर पाऊंगा। इस प्रकार से भगवान अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए 3 टाइम। एक्चुअली हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये गाते जरूर हैं सुबह, लेकिन करते नहीं, तो इसलिए करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। तो यानी केवल ये जान लेना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा, ये सफिशिएंट नहीं है, बल्कि आत्मा के प्रैक्टिकल कार्यों में लगना पड़ेगा और वह है भक्ति के कार्य। और इस प्रकार से जब व्यक्ति करता रहता है तो उसके हृदय से भौतिक भोग की इच्छा ही खत्म हो जाती है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही खत्म हो जाती है और उसका मन और अधिकाधिक भगवान की भक्ति में ही दृढ़ होता चला जाता है। अगर उसका मन दृढ़ नहीं है तो फिर वो भौतिक भोग के कार्यों में लगा रहेगा और उसकी चर्चा आगे के श्लोक में भगवान करेंगे। हरे कृष्णा।